ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विकास परियोजनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के जी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर संभाग के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने बस्तर में नागरनार में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए इस्पात संयंत्र को भी राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया और निजामाबाद से 8,000 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी किया। देश के विकास के लिए आज उठाए गए इन महत्वपूर्ण कदमों पर चर्चा के लिए हमारे साथ है श्री के जी सुरेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में सर।
जी नमस्कार, धन्यवाद।
सर, आपसे जानना चाहेंगे आज जो विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, पहले छत्तीसगढ़ में फिर तेलंगाना में, कैसे देखते हैं आप इस कदम को? उन्होंने ये कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब देश का हरेक राज्य, हरेक जिला और हरेक गांव विकसित होगा। आपको लगता है उस दिशा में उठाया गया आज जो ये कदम है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा देश की प्रगति के लिए?
इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अगर आपको याद हो तो अपने पहले कार्यकाल में भी कहा था कि एक समावेशी विकास की बात कही थी उन्होंने। उन्होंने कहा था कि भारत को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा, टीम इंडिया की तरह काम करना पड़ेगा, जिसमें सभी जो राज्य है उनको उस टीम का एक सक्रिय भागीदार बनके काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास। देखिए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना दोनों ही विपक्षी दलों द्वारा शासित प्रदेश है, लेकिन केंद्र की तरफ से कभी भी भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो अनुदान के आवंटन में हो या परियोजनाओं के विषय में हो, बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। कई बार उनके अर्हता के अनुसार उनको जो शासकीय दल है उनके द्वारा शासित प्रदेशों से भी ज्यादा भी कई जगह जो है उनको फायदे पहुंचाए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जो परियोजनाओं का जो भी प्रधानमंत्री ने लोकार्पण किया वो विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं कहूंगा कि जनजाति बाहुल प्रदेश है और वहां हम देखते हैं कि नक्सलवाद का एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां जो मासूम जनजातियां हैं उनको गुमराह करने का एक प्रयास किया जा रहा है। वहां ये विकास के किरणों को पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां विकास के इस यात्रा को पहुंचना जरूरी है और उसमें वहां छत्तीसगढ़ अपने खनिज पदार्थों के लिए जाना जाता है और जो स्टील प्लांट इस्पात का जो नगरनार में बस्तर जिले में जो जनजातीय क्षेत्र का एक जनजातीय बाहुल जिला है, जो देश का एक बहुत बड़ा एक जिला है, वहां जो एनएमडीसी का जो इस्पात का कारखाना खुला है वो लगभग 50,000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा परियोजना है जो वहां के विकास में, वहां के चौमुखी विकास में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इसी तरीके से चाहे वो डेमू की जो ट्रेन सर्विस है इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट का कांकेर में, तड़ोकी से जो राज्य की राजधानी है कांकेर में वहां तक की बात हो, मैं समझता हूं कि ये सब परियोजनाएं एक सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
सर, जैसे आपने कहा कि ये जो रेल परियोजनाएं हैं, एक सड़क जो परियोजना है उसका भी लोकार्पण किया गया है और ये ऐसे जो हमारे विशाल देश है उसके दूर दराज के इलाकों में खास इसका फायदा पहुंचेगा। और प्रधानमंत्री ने जैसा आज कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, उन्होंने कहा कि गरीबों का भला करना ही उनकी पहली प्राथमिकता है। सो आपको लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि इतने सारे रोजगार का सृजन होगा तो ऐसे जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको आगे लाने में और देश में इक्विटेबल डेवलपमेंट हो उसके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है?
बिल्कुल। देखिए, समावेशी विकास की बहुत जरूरत है। कई बार कुछ शहर कुछ राज्य विकसित होके आगे निकल जाते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो उत्तर पूर्व शायद ठीक कोई प्रधानमंत्री है जिन्होंने सभी 7 राज्यों का, अभी तो 8 हम उसको मात्र सेवन सिस्टर्स नहीं कहते हैं, उसको अष्टलक्ष्मी प्रधानमंत्री ने नाम दिया। आठों राज्यों में जो है प्रधानमंत्री कई बार स्वयं गए और वहां विकास जिस गति से चल रही है, जिस तीव्र गति से, ये अभूतपूर्व है। तब तक उत्तर पूर्व शेष भारत पर निर्भर था, आज उसको स्वावलंबी भारत के तहत जो है उसको स्वावलंबी बनाना आवश्यक है। तो उन्होंने एक बार कहा भी था, मुझे याद है, कि कहीं ना कहीं पूर्वी भारत इस पूरे भागदौड़ में, विकास की इस यात्रा में कहीं पीछे रह गया। तो ऐसे में उन्होंने फिर कहा कि तो सबको हमको साथ लेके चलना है, तो चाहे वो उड़ीसा हो, बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, एक समय में जिनको बीमारू स्टेट्स कहा जाता था, बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वहां विकास जिस तीव्र गति से चल रही है वो अप्रत्याशित है, कभी नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूं कि आज एक सर्वांगीण विकास की दिशा में जो है कार्य हो रहा है और चौमुखी विकास की दिशा में काम हो रहा है, क्योंकि विकास अगर भारत को वो विश्व गुरु और विश्व को नेतृत्व पहुंचाना है, देना है, तो मैं समझता हूं कि उसका अपना आर्थिक और सामाजिक विकास बहुत जरूरी है। और उस दिशा में ये कदम जो आज लिए गए हैं, मैं जानता हूं आलोचक कहेंगे कि ये चुनाव की दृष्टि से हो रहा है, लेकिन चुनाव तो हमारे देश में हर साल होते हैं, और इसलिए ये कहना जो है, इसलिए एक डिमांड भी आई है कि वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात आती है, तो चुनाव अपनी जगह है, लेकिन देश को केंद्र में रख के उसको प्राथमिकता देते हुए भेदभाव किए बगैर बड़ी परियोजनाएं, विकास की परियोजनाएं, रोजगार उन्मूलक परियोजनाएं, ये किस तरीके से ज्यादा प्रदेशों में हर जन जन तक विकास पहुंचे, घर घर तक विकास पहुंचे, उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम आज उठाए गए हैं, जहां शहर ही नहीं बल्कि ग्राम का भी, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या उज्ज्वला का योजना हो, जनधन योजना हो, अब कल ही हमने गांधी जयंती मनाया था तो दरिद्र नारायण की बात महात्मा गांधी ने कही थी, या पंडित दीनदयाल जी ने जो है, उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी। मैं समझता हूं कि उस अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी जो है उस विकास का लाभ मिले, इस दृष्टि से ये कदम उठाए गए हैं।
और अगर हम इस्पात संयंत्र जो लगाने की बात की गई है एनएमडीसी का, उसकी बात फिर से करें, तो उसका जो एक स्थान चुना गया है उससे वाहन क्षेत्र और रक्षा क्षेत्र को तो नई ऊर्जा मिलेगी ही, और जैसा हम अभी बात कर रहे थे कि लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके अलावा आपको लगता है कि इस्पात उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कोशिश पिछले 9 वर्षों से की जा रही है कि भारत को हरेक जो एक कोर सेक्टर है उसमें आत्मनिर्भर बनाया जाए?
बिल्कुल, खासकर देखिए, हमने जो अधोसंरचना विकास, ये अभूतपूर्व है, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज बने हैं, जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर का विकास हुआ है, देखिए जब तक सड़क नहीं जाएगा गांव-गांव तक, तब तक विकास होना संभव नहीं है। एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है, इसलिए उस दृष्टि से वो जरूरी है। दूसरा जो है, उद्योगीकरण होना बहुत जरूरी है, निवेशकों के मन में वो विश्वास पैदा करना जरूरी है कि भारत में उनका निवेश जो है वो सुरक्षित है। ये तो खैर एनएमडीसी तो सरकारी है, लेकिन विदेशी निवेशकों की भी बात करेंगे, वो चाहेंगे कि उनको एक अच्छा अवसर मिले जहां वे अपना व्यवसाय को कर पाए, स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, साथ ही जो है उनको भी उसका लाभ हो। लेकिन पिछले हम देखेंगे कि कुछ वर्षों से जो प्रधानमंत्री जी ने जो नीति अपनाई है कि वो जो अनावश्यक निवेश नहीं, जो भारत के लिए जो बहुत ही आवश्यक निवेश है और बहुत ही आवश्यक उद्योग है, जहां भारत मात्र एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंट्री नहीं है, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, इसलिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया गया, स्टार्टअप इंडिया पर जोर दिया गया, स्टैंड अप इंडिया पर जोर दिया गया, सिर्फ रोजगार ही नहीं उद्यमिता पर जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उद्यमिता की दिशा में काम करें, भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। इस दिशा में भी जो है लगातार कार्य चल रहा है कि कहां आयरन ओर, जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट होता था हजारों करोड़ों रुपए का विकसित देशों में, जापान में और अन्य देशों में, और वहां से वो फिनिश्ड प्रोडक्ट बनके भारत में वापस उसके 100 गुना दाम में हमको वापस बेचा जाता था, आज हम खुद इस्पात निर्माण कर रहे हैं, हम खुद जो है सिलिकॉन चिप्स बना रहे हैं, हम खुद जो है बॉइंग जैसे बड़े जो विमान निर्माता है उनके साथ मिलकर भारत में हम लोग जो है विमान का तक निर्माण कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि से भी जो है ये बहुत आवश्यक है, स्वावलंबी भारत के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करें, और उसके लिए जो है एक्सेसिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। तो इन सभी दिशाओं में कार्य हो रहा है।
तो जो मैन्युफैक्चरिंग इको सिस्टम है, हमारा इकोनॉमिक इको सिस्टम है, उसके लिए जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है और पिछले 9 वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर खर्चा बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले से 6 गुना अधिक है। आपको लगता है कि इसका जो एक ये भी ध्यान रखा गया है कि पूरे देश में इसका फायदा हो, आपने इतनी सारी जो अभी बताई जो योजनाएं हैं सरकार की, उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वोकल फॉर लोकल या प्रोडक्शन बाय मासेस, ताकि छोटे छोटे उद्योग उभरे, एक या दो लोगों या तीन लोगों के मिलकर भी एक एंटरप्रेन्योरशिप का कहें कि उसमें एक स्टेप लें, उसके लिए आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना?
बिल्कुल, देखिए आप देखिए हथकरघा जो लोग काम करते हैं, हैंडलूम में जो काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट में जो काम करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो उनको भी इतना बढ़ावा दिया है। देखिए वो पूरा उस्ताद जो स्कीम है उसके तहत अखिलियतों में जो अल्पसंख्यकों में भी जो कारीगर हैं, जो अलग अलग कलाओं में हुनर अपना रखते हैं, अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में पारंपरिक चीजों में हुनर रखते हैं, उनको शक्ति प्रदान करने की कोशिश की है उस्ताद स्कीम के अंतर्गत। हम देखते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को उन्होंने बढ़ावा दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री अपने 15 अगस्त और अपने मन की बात में आह्वान देते हैं पूरे देश के लोगों को कि भैया वे जो है वो जरूर बनारसी साड़ी खरीदें। अब वो तो पारंपरिक खिलौनों को तक वो प्रमोट करते हैं कि भाई ये हमारे पारंपरिक खिलौने हैं, इनको हमको खरीदना चाहिए, हमारे बच्चों को इनसे खेलना चाहिए। तो खुद वो भारत के जो पूरे देश भर में जो परंपरागत हमारे उद्योग रहे हैं, हमारे जो जिनको हम ट्रेडिशनल हमारे इंडस्ट्री कहें, कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उनको बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो मैं समझता हूं कि मैं खुद अभी अपने मध्य प्रदेश में मैंने देखा है चंदेरी जैसे जगहों में जो है सिर्फ ऐसे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं जहां उनको एक मंच मिले अपने प्रोडक्ट्स को, जो हस्तकरघा जो काम करते हैं उनको जो है एक मंच प्रदान करें जिससे कि उनको एक मार्केटिंग करने का अवसर मिले। मैं समझता हूं कि इसी से ही रोजगार भी का भी सृजन होगा, इसी से ही हमारे परंपरागत जो भी हमारे उत्पाद रहे हैं उनको संरक्षण मिलेगा और इसी से ही जो है देश में उद्यमिता बढ़ेगी।
और अगर आप देखें सुरेश जी, तो आज जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो बहुत ही वाइड रेंजिंग है, इस्पात क्षेत्र हो, चाहे रेलवे क्षेत्र हो, सड़कों का क्षेत्र हो या बिजली क्षेत्र हो, एनटीपीसी का नया एक संयंत्र, मॉडर्न संयंत्र शुरू किया गया है तेलंगाना में, या आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले आधुनिक ब्लॉक की आधारशिला रखी गई है तेलंगाना में। आपको लगता है कि हर जो पहलू है जो एक आम नागरिक को प्रभावित करता है उसके विकास पर जो सरकार है वो समावेशी एक बल दे रही है?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अब आप देखिए ना, अपने ही विजिट में तेलंगाना का ही अगर हम यात्रा की बात करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि इवन उनके शिक्षा के लिए जो केंद्रीय जो जनजातीय विश्वविद्यालय मुलुगु जिले में तेलंगाना में 900 करोड़ के कीमत पर जो बनाने जा रहे हैं, समक्का सारका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से, चाहे वो 108 किलोमीटर का जो है 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे जो है वारंगल से खम्माम का हो, या जो है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, अभी तक तो कॉफी बोर्ड था, कॉयर बोर्ड था, अन्य बोर्ड बनते थे, लेकिन हल्दी के लिए, जिस हल्दी के लिए आपने देखा कि आईपी के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ी थी, जिस हल्दी को हम परंपरागत रूप से जो है हम लोग इस्तेमाल करते आए, उस हल्दी को वैश्विक स्तर पर कैसे प्रमोट किया जाए, इस उद्देश्य से हल्दी का एक अलग बोर्ड जो है, टर्मरिक बोर्ड जो है वो बनाने का जो घोषणा उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि परंपरा, अधोसंरचना और साथ साथ शिक्षा, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ये आप ये नहीं कह सकते कि उनका पूरा फोकस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, आप ये नहीं कह सकते कि उनका पूरा फोकस जो है सिर्फ जो है पारंपरिक चीजों में है, या उनका फोकस सिर्फ शिक्षा में है। शिक्षा के बाद उद्यमिता आनी चाहिए, उद्यमिता से जो है औद्योगीकरण होना चाहिए, तो पूरा एक सीक्वेंस में जो है एक मैं कहूं कि एक चौमुखी विकास, एक सर्वांगीण विकास, एक समावेशी विकास, इस दृष्टि से आज की सारी घोषणाएं हुई है, ऐसे मैं देखता हूं।
सो प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि विकसित भारत के लिए भौतिक, डिजिटल और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी मूल सुविधाओं को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना होगा, इस दिशा में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में आज उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों पर इस समग्र चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, बहुत बहुत।
तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विकास परियोजनाओं पर अभी आप चर्चा सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।